ओम शांति। 11 फरवरी 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से जुड़कर गूगल मीट का लिंक है। आप किसी भी प्रोग्राम में सारे दिन के रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक है हमें जुड़ने के लिए। यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में चलती ही लाइन में देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके मन में कोई सुझाव आ रहा है हम सब के हित में, वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते, मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। जो रोजाना बाबा हमें देते हैं वो है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना, इन रत्नों का धंधा करना है। कौन खरीदेगा ये रत्न, किसको बेचने हैं ये रत्न?
जिनको नहीं मिले हैं,
जिनको नहीं मिले हैं,
अन्य आत्माओं को और आत्माओं को।
बताओ, आज मैं बेचा सेल्समैन बना दिया आज में। ये रत्न है, इन रत्न। हाँ जी,
पहले अपने व्यवहार में लाने, सातों घोड़ा से सकती है, फिर दूसरे को देनी है।
पहले अपने में लाने हैं, फिर दूसरों को देनी है, और ये रत्न बेचने हैं। इसके बदले में मिलेगा क्या
हमें? और मिलते हैं,
डबल मिल जाएंगे।
हाँ, और
हमें इनको देने के बाद मिलेंगी दुआएं। हमें इनको, जिनको भी हम देंगे उनसे हमें मिलेंगी दुआएं। उन दुआओं के आधार पर हमारा उमंग और उत्साह बढ़ता है, जिसके कारण धारणा भी बढ़ती है, निश्चय भी बढ़ता है, फिर और दुआएं मिलती हैं। तो जितनी दुआएं मिलेंगी उतना हमारे अंदर निश्चय भी बढ़ता जाएगा, उमंग उत्साह भी बढ़ता जाएगा और कमाई होती जाएगी। जितनी आत्माओं को देने के निमित्त बनेंगे वो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, वो हमारा परिवार बनेंगे। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। यहाँ क्या सीखते हैं? ज्ञान सीखते हैं, भक्ति नहीं। और अभी भी हम भक्ति करेंगे तो फिर ज्ञान कब सीखेंगे और कब ज्ञान रत्नों का धंधा करेंगे? अभी भी हम यहाँ आकर वही भक्ति करते रहे तो क्या होगा? कब तक हम ज्ञान रत्नों का धंधा नहीं कर सकेंगे? भक्ति है तो ज्ञान रत्न नहीं, भक्ति में ज्ञान रत्न नहीं है। प्रश्न, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते? मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को, किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझकर उसकी बढ़ाई करते? है वो ड्रामा की वंडरफुल नूंद। जो जिसमें भावना रखता है उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता, जो जिसमें भावना रहता है उसे उसका साक्षात्कार हो जाता है। ये ड्रामा में नूड है, उस आत्मा के पार्ट में नूड है। यदि एक आत्मा के पार्ट में नूड है कि वो उसमें भावना रखेगा और उसको उसका साक्षात्कार हो जाएगा, अब वो साक्षात्कार होना ड्रामा में नूड है, वो तो वो समझते कि भगवान ने साक्षात्कार करा दिया। कितनी क्लियर बात बाबा करते हैं। वो ड्रामा में नूंद है परंतु वो समझते हैं कि तो भगवान ने हमें साक्षात्कार कराया है, लेकिन होता तो सब कुछ ड्रामा के अनुसार। इससे स्पष्ट बात कहीं हो सकती है कि द्वापर में भगवान आकर किसी को साक्षात्कार नहीं कर? नहीं, क्या जरूरत है उसको? संगम पर भी किसको क्या साक्षात्कार कराने की, इसके लिए शिव बाबा आए उसको आके दिखाए के देख।
हाँ जी, साक्षात्कार के साथ साथ मनोकामना भी पूरी होती है, ये भी ड्रामे में नहीं है क्या?
बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया हुआ है वही तो मुझे मिलेगा, मेरे कर्म की तो क्रिया की प्रतिक्रिया मिलेगी। मैंने किया है कुछ और, जैसे बहुत सारे भाई बहन हम देखते हैं भक्ति मार्ग के अंदर कहते हैं जैसा करो जी, चीटियों को जो है ना वो चीनी डाल के आओ, गुड़ डाल के आओ, या हाँ आटा डाल के आओ, अगर चीटियों के बाद आटा डाल के आयो इसके बदले में आपको नौकरी मिल जाएगी क्या? क्या इसके बदले में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? आपने उन चीटियों को सुख पहुंचाया है, आपको कोई दूसरा से सुख पहुंचाएगा? कर्मों की गति को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो जिसको हमने दिया है वही तो हमको देगा, जो हमने उसको दिया है वो तो वही तो देगा। हमने जिनको सुविधा दिया है, सुख दिया है, सहयोग दिया है, वही तो मेरे को सुख और सहयोग और सेवा देंगे। अब मैं दूंगा चिड़िया को और मुझे मिलेगा किसी और मनुष्य से? क्यों भाई, मैंने चिड़ियाओं को सुख दिया है, मैंने पक्षियों को सुख दिया है, मैंने उनको सुविधाएं प्रदान की है, वो बाबा कहते तुम्हारे लिए ऐसे कलरव गीत, सुंदर सुंदर गीत गाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम उनके साथ संपर्क का सुख ले सकेंगे। अब जिसने पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है वो पक्षी उसके वातावरण में आएंगे ना, उसके जीवन काल में आएंगे और वो उनके साथ बैठकर आनंद लेगा। बाकी के पास टाइम ही नहीं आनंद लेने का, उसके पास में उसने कभी चिड़ियाओं को पक्षियों को कोई प्यार दिया नहीं है, अब उनसे वो प्यार उनको मिले क्यों? अब जिसने पशु पक्षियों के साथ बजाय जानवरों को प्यार दिया है तो जानवर उससे प्यार देंगे, मनुष्यों को प्यार दिया है तो मनुष्य उससे प्यार देंगे। दिया नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, वो क्यों उनको सुख देंगे भाई? वो क्यों देंगे उनको सुख?
जो देंगे,
जिसको देंगे उसी से मिलेगा। परंतु आप तक ये समझते हैं कि भक्ति मार्ग के अंदर ये समझा जाता है कि तुम कर भला तो हो भला, न तो किसी और का भला कर, तेरा कोई और आके भला कर जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी युक्ति लगा दी। पर अब हमें बाबा ने आके समझा दिया, जिसको देंगे वही देगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। ये नहीं कि मैं दूंगा तो रमेश को आकर के देगा अशोक, क्यों देगा अशोक मुझे आकर के? क्यों देगा? रमेश ही देगा, बस फर्क इतना है कि उसका शरीर चेंज होता है। आत्मा ने देना है, आत्मा ने लेना है, क्योंकि एक कार्मिक अकाउंट आत्माओं के बीच में है, ना कि शरीरों के बीच। वो बात अलग है कि अगले जन्म में वो पुरुष बन जाए, स्त्री बन जाए, थर्ड जेंडर बन जाए, या नाम बदल जाए, कुछ भी हो, नाम तो हाँ, क्योंकि ड्रामा में आत्मा वही रहेगी, लेकिन वो हाँ जी
हमारे पास गाय है तो हम उसकी सेवा करते हैं या वो हमारी सेवा करती है, हमारे दूध देती है, इसमें क्या डिफरेंस है?
गाय जो है हमारे पास है, हम गाय को खाना देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हम उससे दूध लेते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न आया था, कंपटीशन हुआ था, तो एक बहन को मेरे से बात की तो मैंने उसे बताया, तो उसका क्वेश्चन जैन धर्म वालों का था कि उसको फर्स्ट प्राइज दिया था, जैन धर्म वालों ने उसको फर्स्ट प्राइज दिया था कि जो गाय का जो दूध है वो हिंसा है या अहिंसा, क्योंकि वो अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं, तो अहिंसा के ऊपर महत्व था और गाय का दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो इस प्रकार का उनका एक टॉपिक था। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि गाय के ऊपर हम अहिंसा तब करते हैं क्योंकि गाय का दूध देना वो समझते हैं, जो आम दुनिया का प्रचार कुछ लोगों का विचार है, सबका तो नहीं कहूंगा, कि वो जो है ना बछड़े के लिए है और वो बछड़े को दूध ना दे करके उससे जो है ना हिंसा करते हैं और उसे जो है ना कुछ और खिला देते हैं और दूध सारा का सारा निकाल देते हैं, उस बछड़े के दूध को हम पिए ये पाप हुआ, क्योंकि हिंसा अहिंसा पाप और पुण्य ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने यदि किसी को दुख दिया तो हिंसा हो गई पाप हो गया। तो इस प्रकार से इस विषय पर लिया गया, तो दूध देना पहली बात ये शाकाहार है मांसाहार, तो उसके अंदर दूध जो है ना गाय ने खाया है और गाय ने उसे चबा करके उसे एक ऐसा सल रूप अपने बच्चे के लिए तैयार किया है ताकि उसके बच्चे को सहजता रहे और वो अपना विकास कर सके, और वो सारे पौष्टिक तत्व मांसाहार का कोई भी नहीं है, वो सिर्फ सारे क्या है कि गाय ने खाया ही शाक है और शाक से ही बनाया है और वो अपने बच्चे के लिए बनाया है। अब हमने उसके बच्चे को मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, यदि वो सारा दूध बछड़ा पी ले तो बछड़ा भी बीमार हो जाएगा, क्या नहीं, और उसके बाद क्या होता है कि हमने जो है उसको उसके बछड़े को भी खाने के लिए दिया, उसको भी खाने के लिए दिया और उसके बदले में हमने उसके दूध लिया, उचित मात्रा में ले रहे हैं, बछड़े का भी छोड़ो अपना जितना है उसका एक्स्ट्रा वो आप ले रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक आप सौदा कर रहे हैं,
इसका माइक बंद करो,
और उसके बाद जो है ना क्या होता है कि हमारे पास कि हमने उसको खिलाया उसने हमें दिया, तो हमने एक दूसरे के साथ अपना हिसाब किताब बराबर किया, तो इसी प्रकार से ना तो वो दूध मांसाहार है और ना ही इसमें कोई हिंसा है, बाकी ये हिंसा करने वाले आज कर रहे हैं कि बछड़े को दूध बिल्कुल नहीं देना है, चारा निचोड़ लेना है, इंजेक्शन लगा कर लेना है, मतलब कई तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो हिंसा है और वो हमारा एक दूसरे का सौदा है। अब हमने बर्तन साफ करने वाला लगा रखा है या लगा रखी है, अब वो हमारे से पैसा लेता है, हमें बर्तन साफ करके देता है, हमारे हिसाब बराबर हो गया, उसको पैसे चाहिए थे हमें काम चाहिए था, तो हमने वो भी संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट है, और यदि हम काम वाले के पैसे काट लेते हैं उससे काम करवाते हैं ज्यादा और उसको देते हैं कम, और उसको जो दुख मिलता है वो दुख हमें भी लेना पड़ेगा, वो कभी ना कभी आकर हमें दुख देगा। सेम पशु पक्षियों के साथ है कि हमने उनको टॉर्चर किया है, हमने उनको दुख दिया है, तो वो दुख भी हमें लेना पड़ेगा, वो भी संतुष्ट रहे हम भी संतुष्ट रहे, कोई भी हमारे पास आत्मा आए वो असंतुष्ट ना, ठीक है। तो ये हमारा हिसाब किताब है, संसार का हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रहेगा, नहीं तो एक बहुत निर्भीक पक्षी जन कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, मैंने उस गाय को भी मारते हुए देखा है और मार दिया, जान से मार दिया, ठीक है कि नहीं। तो मतलब कहने का यह है कि कभी उसने उसको लाठियां मारी होंगी, बहुत दुख पहुंचाया होगा, किसी भी कारण से क्या कारण रहा होगा ये उनके बीच में है, तो आज उसने अपना हिसाब किताब क्या किया बराबर, वो भी आत्मा अपना हिसाब बराबर करेगी
भाई जी, वो हिसाब बराबर करेंगे पर उसको बदला लेने की भावना से नहीं, उसके दिल में कुछ होता होगा, कुछ लगता होगा बोल के उसको मारते हो,
ऐसा बदला लेना मुमकिन नहीं करती होगी, तो क्या समझ रहा है आत्मा को? उसकी तरफ से वो काम हो जाता होगा।
देखिये वो जो होना है ड्रामा अनुसार होना है, और ड्रामा का जो लॉ है, नियम है, वो कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही सारा चलता है। अब किसी जन्म में उसने उसको दुख दिया, आज उसने दुख दे दिया, पिछला बराबर किया अगला बना दिया।
नहीं बराबर कर दिया हिसाब, पर वो मेरे को ये लगता है कि वो आत्मा याद का ही को रखेंगे, इसको मारना है ये सामने आएगा।
उस आत्मा को याद रखने की जरूरत नहीं है, उस आत्मा में रिकॉर्ड इस प्रकार से है कि उसने उस समय वो करना है, उसे याद रखना। अब हमें कोई 84 जन्मों की कहानी याद थोड़ा है कि किस जन्म में किस
जाने अनजाने में हो जाता है।
जाने अनजाने नहीं कहेंगे इसको, बस सीधी सी बात है कि ड्रामा अनुसार। जाने अनजाने का मतलब पता नहीं गलती से हो गया या कैसे हो गया, वो कंफ्यूजन है। हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सीधा ड्रामा में ये होना था, होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो, ये सत्य है। तो जाने अनजाने, जाने अनजाने होनी होनी होकर रहे की बात से अलग हो जाता है, विपरीत हो जाता है। हम जाने अनजाने शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो हमारी कमी है, वो हमारे ड्रामा में पार्ट है।
नहीं जानते भी हो जाता है,
वो जो होनी है ना, इसलिए
होनी है, पर वो उसको वो तो जब करते तो वो नहीं जानती ना, मैं आगे इसके वो तो ये नहीं जानती कि मेरे को उसने पहले मारा था, अब मैं उसको मार रही हूँ, ये गाय को क्या पता है?
ये आपको भी नहीं पता, गाय की तो बात ही
है। वो तो आत्मा में
नहीं, आप इतनी ज्ञानी तो आत्मा होने के बाद भी जो आपने सोचा नहीं होता वो आप कर देते, वो आप नहीं कर रहे हो, वो ड्रामा करा रहा है। आपको याद हो या ना हो, ड्रामा में नूंद है, वो एक्ट वैसे ही होना है। मतलब आप मैं हो कुछ भी हो, अब हमने सोचा तो नहीं था कि हम कल क्लास नहीं कर पाएंगे, तो ड्रामा में ऐसा हो गया कि हम नहीं कर पाए। तो इसलिए मेरा हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि होने बलवान है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना हुए, हम चाहे या ना चाहे। ये तो सारी दुनिया कहती है कि हम चाहते तो नहीं है, तो हो जाता है। तो कौन करवाता है? भगवान करवाता है। अच्छा भी भगवान कराता है तो बुरा भी भगवान कराता है। तो परमात्मा कहते मेरे को क्यों दो रहे दोष, ये दोष देना है तो ड्रामा को दो, और ड्रामा को भी दोष वो देगा जो ड्रामा को नहीं जानता, क्योंकि ड्रामा को जो जानता है तो उसे ये पता है कि होनी होकर रहे, अनहोनी ना। ड्रामा में अनहोनी होती ही नहीं है,
दोष भी नहीं दे सकते,
नहीं दे सकते, क्योंकि दोष दे रहा है तो भी उसे ड्रामा की नॉलेज नहीं है। लेकिन होता सब ड्रामा अनुसार है, एक और भगवान की बड़ाई करते हैं, दुख हरता, सुख करता, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, एक तरफ उनकी बड़ाई करते हैं और दूसरी तरफ क्या क्या देते हैं, सर्वव्यापी है। दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, जरे जरे में है, ओम शांति भगवानो वाच। बच्चों को ये तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को वा देवता को भगवान नहीं कहा जाता, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। ये भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है, मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में ये कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं ये तो समा माया का संग है, वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हम को भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानों वाच समझेंगे, दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं, अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको। बच्चों को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला नहीं सकेंगे। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे, वे बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वे तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे। श्री कृष्ण का भूतों को साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं, तो विश्व रूपी मक्खन है वो, जो आपस में लड़ते हैं वो भी सृष्टि रूपी मक्खन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं, ये भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है, मनुष्य समझते हैं हमको भगवान, मनुष्य क्या समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराता है, ये भी समझते हैं कि जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करते हैं और अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया, ये नहीं कहेंगे। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वे साक्षात्कार होता है, ये ड्रामा में नूंद है, ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं, एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिकर में भगवान है, कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ, आए कहाँ, आए कहाँ से। ये सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, ये है कंसपुरी, कंस अकासुर बकासुर कुंभकर्ण रावण, ये सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है, क्या क्या बैठ लिखा है, ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं, एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वे भक्ति ही सिखलाते हैं, ये बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है, ये कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितने खुश होते, मनुष्य तो भक्ति में कितने खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए, क्या बना दिए हैं, सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। भक्ति का धंधा तुम बच्चों का धंधा है, ज्ञान रत्नों का इनको भी व्यापार कहा जाता है, बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वे पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं, जनक फिर अनुजनक बना, जनक क्या बनता है, अनुजनक बनता है। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी कृष्ण बनेंगे, अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे, कहां वे सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहां ये कोई को कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, ये थोड़े समझते हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम ही 84 जन्म लेंगे। ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, पहली बार नहीं चल रहा है, अनेक बार चलता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे से परे है, वहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे सौकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है, भारत जैसा पावन का और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है, और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, ये सारी दुनिया बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू। जैसे लंका क्या है, एक टापू है, ऐसे ही भारत भी, दुनिया भी, सारी दुनिया भी एक समुद्र पर टापू है। वो छोटा टापू है लंका, और बाकी सारे बड़े टापू। बस दिखाते हैं रावण लंका में रहता था, अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है, ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी, सारा संसार समुद्र पर खड़ा है, चारों तरफ पानी पानी, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है, और ये सब सीताएं रावण की जेल में। सीताएं किसे कहते हैं? सीताएं कहते हैं जो भक्ति करते हैं, जो भक्त, ये सब सीताएं जो सारे भगत हैं, वो सारे के सारे इस समय रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं, है सा ये सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं, ये बायोस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। भूल वतन सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं भूल वतन की रहवासी हैं। हम सारी आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं? मूल वतन की रहने वाली हैं। देवताएं सूक्ष्म वतन वासी हैं, उनको फरिश्ता भी कहते हैं, वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं, ये सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। नोट करने वाली बात है ना, अभी तुम आते जाते हो सूक्ष्म वतन में, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो। क्लियर हुआ? जब तुम मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती है। जाते वक्त हम सब सूक्ष्म वतन का अनुभव करते हैं, परंतु आते वक्त सूक्ष्म वतन में कोई पार्ट
नहीं है।
सीधी आती हो, वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं, बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, वे कभी ऐसी बातें नहीं कर सकते कर सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, आर्गन्स बिगर तो बात कर ना सके, बिना आर्गन्स के तो बात कर नहीं सकते। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है, ये है सब नई बातें। निराकार बाप उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही, तुम आत्माओं का नाम क्या है? आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारा तो कोई होता ही नहीं। नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक हैं, करते दूसरा है, समझते कुछ है और करते कुछ। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो, तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर नहीं हो सकती। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है सेक्शन में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बनते हैं, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है। हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु ये भी समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट ही ये है नर से नारायण बनना, राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है।
भाई जी, नर से नारायण बनना बोले तो
हर नर नारायण बनता है, पुरुषार्थ करता है, बाबा अब करा रहे हैं। नर से नारायण बनना मतलब सत्युग के लायक बनना, चाहे लक्ष्मी बने।
नर बोले तो शरीरधारी को नर कहेंगे।
हाँ जी,
तो मेल भी तो नारायण बन सकती है ना?
फीमेल भी नारायण बन सकती है। वो फार्मूला ये है ना कि हर आत्मा एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री बनेगी। अब ब्रह्मा इस जन्म में भी पुरुष है और फिर पुरुष बन के गया है। ये प्रश्न बहुत होने हमने किया था इस क्वेश्चन पर भी।
नर के जगह आत्मा कैसे नहीं जमता था?
नहीं जमता था, क्योंकि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, उसमें बहुत जरूरी है आत्मा और शरीर का जुड़ना। नर से नारायण मतलब कि आत्मा मनुष्य जीव आत्मा नहीं नारायण बनना है, आत्मा नहीं नारायण नहीं बनना खाली। ये जीव आत्मा जो अब नर के रूप में है उसने ही जाकर नारायण बनना है, कर्म करना है, क्योंकि परम धाम में कोई भी नारायण नहीं होता। आत्मा वहां है परंतु आत्मा वहां ना लक्ष्मी बनती ना नारायण बनती, क्योंकि शरीर नहीं है। आत्मा शरीर सहित ही बनती है और शरीर सहित ही बिगड़ती है। वो तो घर उसी स्टेज पर जाती है जिस स्टेज में वो आत्मा विष्णु पुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी यह विष्णु का चित्र रखते हैं। दिखाई दे रहा आपको? लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते, ये कैसे बन गया होगा विष्णु का चित्र?
संगम पे से गया होगा ना,
और वहां सिंहासन होगा, हमने चर्चा की थी।
सिंहासन पे नहीं होगा, पर अब बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी का चित्र, विष्णु का चित्र होगा।
बाकी सिंहासन कोई इस प्रकार का नहीं होगा जिस प्रकार से आम दुनिया के अंदर सिंहासन बनाए जाते हैं, वहाँ आकर महाराजा महारानी बैठते हैं। परंतु ये बात ठीक है कि जैसा भी वहाँ बैठने की व्यवस्था होगी, एक फैमिली हेड कैसे बैठता है, वो जो नियम होगा उसी हिसाब से वो बैठे। और फैमिली हेड वहाँ कोई ये तो भय चिंता वाली बात नहीं होती, और वो कहीं भी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, परंतु जहाँ भी जाएंगे उनके सेवक उनके लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे।
भाई जी, विष्णु का चित्र है लेकिन वो विष्णु को जानते भी नहीं ना।
बिल्कुल नहीं जानते। वो विष्णु का चित्र क्यों बन गया? क्योंकि इस समय वो विष्णु चतुर्भुज संगम पर चित्र बनाया होगा, जो भी उन्होंने बैठने की व्यवस्था रखी होगी, और उसमें विष्णु को, क्योंकि उनकी स्मृति में है कि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है, तो उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का चित्र लगा दिया। उन्हें सत्य ज्ञान नहीं है जिसको वो बदल कर देंगे। अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। मतलब विष्णुपुरी में, मतलब विष्णु का चित्र क्यों लगाते हैं कि विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। कौन बने थे विष्णुपुरी के मालिक? राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण?
राधा कृष्ण।
राधा कृष्ण बने थे, और जब राधा कृष्ण बड़े हुए तो उनका नाम लक्ष्मी नारायण हो गया।
विष्णुपुरी के मालिक है तो विष्णुपुरी संगम पे है ना?
विष्णुपुरी संगम पर होती है, तो संगमपुरी पर ही तो विष्णु कोई आत्मा है नहीं, विष्णु का चित्र।
माइक बंद करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
विष्णु को जो है ना, विष्णुपुरी संगम पर होती है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तब विष्णुपुरी नहीं होती, इसलिए वहां पर विष्णु का चतुर्भुज का चित्र चला जाता है, क्योंकि इसी समय संगम पर बनाकर जाते हैं और वही चित्र वहां बनता है, क्योंकि विष्णुपुरी जो स्थापन होती है वो संगम पर स्थापन होती है। वे श्री कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। कौन सी है श्री कृष्णपुरी? ये संगम पर होती है, एक तरफ कृष्णपुरी और एक तरफ कंसपुरी। ये संगम युग पर ही दोनों पुरियां बनती हैं, कृष्णपुरी भी और शंकरपुरी।
विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, सब संगम
की बात। ये तीनों संगम पर होती है, क्योंकि एक तरफ संगम के, एक तरफ काला पानी और एक तरफ गोरा पानी, एक तरफ कंसपुरी, चारों तरफ पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार सारा अति पर चल रहा है, और दूसरी तरफ कृष्ण की पालना भी चल रही है। और जब इसका अंत होगा कंसपुरी का, तो फिर पता लगेगा, जब कंस को मार देता है कृष्ण तो सबको समझ में आ जाता है कि अब भगवान आ गया। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं, दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं चमकता है बिरकुटी में अजब सितारा। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकलकर, रामकृष्ण की आत्मा निकली और विवेकानंद में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा, आत्मा और परमात्मा का? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, बिंदी देखा समझते हैं, समझते कुछ नहीं। आत्मा का रूप साक्षात्कार तो, आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करें। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे, बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गई, इसमें ही वे बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है, गुरु में ही उसकी श्रद्धा बन गई। उसने समझा यही परमात्मा का रूप है, गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। भाई भक्ति मार्ग में समझाए को अब बाप बैठ समझाते हैं जिस बच्चे की। अब बाप बैठ समझाते हैं जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमारी आंखें
साक्षात्कार होगा तो
फायदा क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं। फायदा ये है कि साइकोलॉजी के लिए जिसको बैठ गया उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है तो समझता है कि उससे प्राप्त हुआ, परंतु वो भी ब्रह्मानुसार होना था। कोई आकर के किसको साक्षात्कार नहीं करा सकता क्योंकि ब्रह्मानुसार होना चाहिए था। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया है, उसमें खुश हो जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें, उतरती कला की बातें। पहला जन्म अच्छा होता है फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चों के बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया उनको ही अब समझा रहे हैं, कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है, औरों का तो धर्म ही अलग है। आप बाप समझाते हैं, एक चित्र में भगवानों वाच लिख दो, एक एक चित्र, एक चित्र नहीं एक एक चित्र। एक एक चित्र का क्या मतलब होता है? सभी एक हर एक चित्र में लिख दो भगवानोवाच, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानोवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका ये चित्र है। पूछो तुम बताओ, वो पूछे और तुम उनको बताओ। تم بتاؤ اپنے باپ کو جانتے ہو؟ کہیں گے نہیں جانتے. تو گویا باپ سے پریت نہیں ہے. یدی آپ ان کو جانتے ہوتے تو ان سے کیا ہوتا؟ آپ کو پیار ہوتے. جانتے ہیں تو کیا پیار کریں گے؟ تو وپریت بدھی ٹھہرے. باپ سے پراپتی نہیں تو وناش ہو جائے گی. پریت بدھی وجینتی ستیہ میو جیسے ان کا ارتھ بھی ٹھیک ہے. انکار سے بھی ٹھیک ہے. باپ کی یاد ہی نہیں تو وجے پا نہیں سکیں گے. بابا کو یاد نہیں کریں گے تو وجے کہاں سے ملے گی؟ ابھی تم سدھ کر کے بتلاتے ہو. گیتا بھگوان گیتا شو بھگوان نے سنائی ہے. اس نے ہی راج یوگ سکھایا برہما دوارا. کس کے دوارا؟ برہما کے دوارا راج یوگ سکھایا. شری کرشن بھگوان کی گیتا سمجھ کر قسم اٹھاتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے. شری کرشن کو حاضر ناظر جاننا چاہیے. واہ بھگوان کو کہتے ہیں ایشور کو حاضر ناظر جان. سچ بولو. رولا ہو گیا نا تو قسم بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. سروس کرنے والے بچوں کو گپت نشہ رہنا چاہیے. نشے سے سمجھائیں گے تو سفلتا ہوگی. تمہاری یہ پڑھائی بھی گپت ہے. پڑھانے والا بھی گپت ہے. تم جانتے ہو ہم نئی دنیا میں جا کر یہ بنیں گے. نئی دنیا ستھاپن ہوتی ہے مہابھارت لڑائی کے بعد. بچوں کو اب نالج ملی ہے. وہ بھی نمبر وار دھارنا کرتے ہیں. یوگ میں بھی نمبر وار رہتے ہیں. یوگ میں بھی نمبر وار رہتے ہیں. یہ بھی جانچ رکھنی چاہیے ہم کتنا یاد میں رہتے ہیں. باپ کہتے ہیں یہ ابھی تمہارا پرشارتھ بھوشیہ 21 جنموں کے لیے ہو جائے گا. ابھی فیل ہوئے تو کلپانتر فیل ہوتے رہیں گے. اونچ پد نہیں پا سکیں گے. پرشارتھ کر پرشارتھ کرنا چاہیے اونچ پد پانے کا. ایسے بھی کئی سینٹرز پر آتے ہیں جو وکار میں جاتے رہتے ہیں اور پھر سینٹرز پر بھی آتے رہتے ہیں. سمجھتے ہیں ایشور تو سب دیکھتا ہے جانتا ہے. اب باپ کو کیا پڑی ہے جو یہ بیٹھ دیکھے گا؟ تم جھوٹ بولیں گے وکرم کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. یہ تو تم اچھی طرح سے سمجھ. تم سمجھتے ہو یہ تو تم بھی سمجھتے ہو. کالا منہ کرتا ہوں تو اونچ پد پا نہیں سکوں گا. سو باپ نے جانا تو بھی ایک ہی بات ہے. ان کو کیا درکار پڑی ہے؟ اپنی دل کھانی چاہیے. بابا کو کیا درکار پڑی ہے؟ ہماری دل کھانی چاہیے کہ ہم کیسے پاپ کر رہے ہیں. اپنا پارٹ ہے ہر ایک آتما کا ڈراما میں. میں ایسا کرم کرنے سے درگتی کو پاؤں گا. اپنے آپ کو سوچنا ہے. بابا کیوں بتاوے؟ ہاں ڈراما میں ہے تو بتلاتے بھی ہیں. بابا سے چھپانا گویا اپنی ستیا ناش کرنا. ستیاناش کرنا ہے. پاون بننے کے لیے باپ کو یاد کرنا ہے. تم کو یہی پھرنا رہنا چاہیے کہ ہم اچھی ریتی پڑھ کر اونچ پد پاؤں. کوئی مرا وا جیا उनका फुरना नहीं। फुरना या फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे प्राप्त करें, कैसे ले लें, तो किसको भी थोड़ा थोड़े में समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात, नंबर एक, गुप्त वेश में रहकर सर्विस करनी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान, मन मना भाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भाव। सदा क्या बनो? सुख स्वरूप भाव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिसमें जिससे दुख भाग जाएंगे। जिससे क्या होगा? दुख भाग जाएंगे। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उन लहरों में लहराना आता है, वे उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहरों को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे छेड़ कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए, दुख की लहर भी ना आए। अच्छा स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रतिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अगत इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत आवश्यकता है। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम सा